अमरकांत, जन्म सन 1925 ईस्वी। जिंदगी और जोंक। मोहल्ले में जिस दिन उसका आगमन हुआ, सवेरे तरकारी लाने के लिए बाजार जाते समय मैंने उसको देखा था। शिवनाथ बाबू के घर के सामने सड़क की दूसरी ओर स्थित खंडहर में नीम के पेड़ के नीचे एक दुबला पतला काला आदमी गंदी लुंगी में लिपटा चित पड़ा था, जैसे रात में आसमान से टपक कर बेहोश हो गया हो, अथवा दक्षिण भारत का कोई भूला भटका साधु निश्चिंत स्थान पाकर चुपचाप नाक से हवा खींच खींच कर प्राणायाम कर रहा हो। फिर मैंने शायद एक दो बार और उसको कठपुतले की भांत डोल डोल कर सड़क को पार करते या मोहल्ले के एक दो मकानों को सामने चक्कर लगाते या बैठकर हांफते हुए देखा। इसके अलावा मैं उसके बारे में उस समय तक कुछ नहीं जानता था। रात के लगभग 10 बजे खाने के बाद बाहर लेटा था। चैत का महीना, हवा तेज चल रही थी, चारों ओर घुप अंधियारा। प्रारंभिक झपकियां ले ही रहा था कि मारो मारो का हल्ला सुनकर चौंक पड़ा। यह शोरगुल बढ़ता गया। मैं तत्काल उठ बैठा। शायद आवाज शिवनाथ बाबू के मकान की ओर से आ रही थी। जल्दी से पांव चप्पल में डाल उधर को चल पड़ा। मेरा अनुमान ठीक था। शिवनाथ बाबू के मकान के सामने ही भीड़ लगी थी। मोहल्ले के दूसरे लोग भी शोरगुल सुनकर अपने घरों से भाग चले आ रहे थे। मैंने भीतर घुसकर देखा और कुछ चकित रह गया। खंडहर का वही भिखमंगा था। शिवनाथ बाबू का लड़का रघुवीर उस भिखमंगे को दोनों बाहों को पीछे करके पकड़े हुए था और दो तीन व्यक्ति आंख मूंद कर तथा उछल कूद कर उसे बेतहाशा पीट रहे थे। शिवनाथ बाबू तथा अन्य लोग उसे भयजन्य क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रहे थे। भिखमंगा नाटा था, गाल पिचके थे, आंखें धसी हुई और छाती की हड्डियां साफ बांस की खपतियों की तरह दिखाई दे रही थी। पेट नाद की तरह फूला हुआ, मार पड़ने पर वह बेतहाशा चिल्ला रहा था, मैं बरई हूँ, मैं बरई हूँ, मैं बरई हूँ, साला छटा हुआ चोर है साहब। शिवनाथ बाबू मेरे पास सरक आए थे। पर यह हमारा आपका दोष है कि आदमी नहीं पहचानते। गरीबों को देखकर हमारा आपका दिल पसीज जाता है और मौका बेमौका खुद्दी चुन्नी साग सत्तू दे ही दिया जाता है। आपने तो इसको देखा ही होगा, मालूम होता था महीनों से खाना नहीं मिला है, पर कौन जानता था कि साला ऐसा निकलेगा, हरामी का पिल्ला। फिर भिखमंगे की ओर मुड़कर गरज पड़े, बता साले साड़ी कहाँ रखी है, नहीं वह मार पड़ेगी कि नानी याद आ जाएगी। उसका गला जोर से चिल्लाने के कारण किंचित बैठ गया था, इसलिए संभवतः थक कर वह चुप हो गया। पीटने वालों ने भी इस समय पीटना बंद कर दिया था, लेकिन शिवनाथ बाबू के वक्तव्य से रामजी मिश्र का सोहदा पहलवान लड़का शंभू अत्यधिक प्रभावित मालूम पड़ा। वह अभी अभी आया था और शिवनाथ बाबू का बयान समाप्त होते ही आओ देखा ना ताओ भीड़ में से आगे लपक जूता हाथ में ले गंदी गालियां देते हुए भिखमंगे को पीटना शुरू कर दिया। एक डेढ़ हफ्ते से मोहल्ले में आया हुआ है, शिवनाथ बाबू जैसे निश्चिंत होकर बोले लालची कुत्तों की तरह इधर उधर घुमा करता था, सो हमारे घर में दया आ गई। एक रोज उसे बुलाकर उन्होंने कटोरे में दाल भात तरकारी खाने को दे दी। बस क्या था, परक गया, रोज आने लगा। खैर कोई बात नहीं थी, आपकी दया से ऐसे दो तीन भर भी खांगे रोज ही खाकर दुआ दे जाते हैं। यह घर में आने लगा तो मौका पड़ने पर एकाध काम भी कर देता था, पर अब यह किसको पता था कि आज यह घर से नई साड़ी चुरा लेगा। आपको ठीक से पता है कि साड़ी इसी ने चुराई है। मेरे इस प्रश्न पर वे बिगड़ गए, बोले आप भी खूब बात करते हैं, यही पता लग गया तो चोर कैसा। मैं तो खूब जानता हूँ कि ये सब चोरी का माल होशियारी से छिपा देते हैं और जब तक इनकी कड़ी पिटाई न की जाए कुछ नहीं बताते। अब यही समझिए कि करीब 9 बजे साड़ी गायब हुई। जमुना का कहना है कि उसी समय उसने इसको किसी सामान के साथ घर से निकलते हुए देखा। फिर मैं यह पूछता हूँ कि आज 10 वर्ष से मेरे घर का दरवाजा इसी तरह खुला रहता है लेकिन कभी चोरी नहीं हुई। आज ही कौन सी नई बात हो गई कि वह आया नहीं और मोहल्ले में चोरी बदमाशी शुरू हो गई। अरे मैं इन सालों को खूब जानता हूँ। वह भिखमंगा जब भी तेज मार पड़ने पर चिल्ला उठता, मैं बरई हूँ, मैं बरई हूँ, बरई हूँ। स्पष्ट था कि इतने लोगों को देखकर वह काफी भयभीत हो गया था और अपने समर्थन में कुछ न पाकर बेतहाशा अपनी जात का नाम ले रहा था। जैसे हर जात के लोग चोर हो सकते हैं लेकिन बराई कतई नहीं हो सकते। नए लोग अब भी आ रहे थे, वे क्रोध और उत्तेजना में आकर उसे पीटते और फिर भीड़ में मिल जाते, और जब लगातार मार पड़ने पर भी उसने कुछ नहीं बताया तो लोग खाम खा थक गए। कुछ लोग वहां से सरकने भी लगे। किसी ने उसे पेड़ में बांधने और किसी ने पुलिस के सुपुर्द करने की सलाह दी। मैं कुछ ऐसी सलाह देकर खिसकना चाहता था कि शिवनाथ बाबू का मझला लड़का योगेंद्र दौड़ता हुआ आया और अपने पिताजी को अलग ले जाते हुए फुसफुस कुछ बातें की। कुछ देर बाद शिवनाथ बाबू जब वापस आए तो उनके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थी। एक दो क्षण इधर उधर तथा मेरी और बेचारे की तरह देखने के बाद वह बोले, अच्छा इस बार छोड़ देते हैं, साला काफी सजा पा चुका है, आइंदा ऐसा करते चेतेगा। लोग शिवनाथ बाबू को बुरा भला कहकर रास्ता नापने लगे। मैंने उनकी ओर मुस्कुराकर देखा तो पास आकर झेपते हुए बोले, इस बार तो साड़ी घर में ही मिल गई है, पर कोई बात नहीं, चमारती या डांट टपट पाते ही रहते हैं। अरे इस पर क्या पड़ी है, चोर चाहे तो रात भर मार खाते हैं और कुछ भी नहीं बताते। फिर बाई आंख को खूब खूबी से दबाते हुए दांत खोलकर हंस पड़े, चलिए साहब, नीच और नींबू को दबाने से ही रस निकलता है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि उस दिन पिटाई के बाद भी खंडहर का वह भिगमंगा मोहल्ले में टिके रहने की हिम्मत कैसे कर सका। हो सकता है उसने सोचा हो कि निर्दोष छूट जाने के बाद मोहल्ले के लोगों का विश्वास और सहानुभूति उसको प्राप्त हो जाएगी और दूसरी जगह उसी अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। चाहे जो हो, उसके प्रति मेरी दिलचस्पी अब और बढ़ गई थी। मैं उसको खंडहर में बैठकर कुछ खाते या चुपचाप सोते या मोहल्ले में डग डग सरकते हुए देखता। लोग अब उसको कुछ न कुछ दे देते, बचा हुआ बासी जूठा खाना पहले कुत्तों या गाय भैंसों को दे दिया जाता, परंतु अब औरतें बच्चों को दौड़ा देती कि जाकर भिखमंगे को दे आए। कुछ लोगों ने तो उसको कोई पहुंचा हुआ साधु महात्मा तक कह डाला और धीरे धीरे उसने खंडहर का परित्याग कर दिया और आम सहानुभूति एवं विश्वास का आश्चर्यजनक लाभ उठाते हुए जब वह किसी न किसी के ओसारे या दालान में जमीन पर सोने बैठने लगा तो लोग उससे हल्के फुल्के काम भी लेने लगे। दया माया के मामले में शिवनाथ बाबू से पार पाना टेढ़ी खीर है, किंतु भिखमंगा उनके दरवाजे पर जाता ही न था। लेकिन एक दिन उन्होंने किसी शुभ मुहूर्त में उसे सड़क से गुजरते समय संकेत से अपने पास बुलाया और तिरछी नजर से देखते हुए मुस्कुरा कर बोले, देख बे, तूने चाहे जो भी किया हमसे तो यह सब नहीं देखा जाता, दर दर भटकता रहता है, कुत्ते सुअर का जीवन जीता है, आज से इधर उधर भटकना छोड़, आराम से यहीं रह और दोनों जून भर पेट खा। पता नहीं यह शिवनाथ बाबू के स्नेह से संभव हुआ या डर से, पर भिखमंगा उनके यहाँ स्थायी रूप से रहने लगा। उन्हें के यहाँ उसका नामकरण भी हुआ। उसका नाम गोपाल था लेकिन शिवनाथ बाबू के दादा का नाम गोपाल सिंह था, इसलिए घर की औरतों की जबान से वह नाम उतरता ही न था। उन्होंने उसको रजुआ कहना आरंभ किया और धीरे धीरे यही नाम सारे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो गया। किंतु रजुआ के भाग्य में बहुत दिनों तक शिवनाथ बाबू के यहाँ टिकना न लिखा था। बात यह है कि मोहल्ले के लोगों को कतई पसंद न था कि केवल दोनों जून का भोजन पर रजुआ शिवनाथ बाबू की सेवा करे। जब लोग भगवान ने उनके बीच एक नौकर भेज ही दिया है तो उस पर उनका भी उतना ही अधिकार था और उन्होंने मौका देखकर उसको अपनी सेवा करने का अवसर देना आरंभ कर दिया। वह शिवनाथ बाबू के किसी काम से जाता तो रास्ते में कोई न कोई उसको पैसे देकर किसी काम की फरमाइश कर देता और यदि वह आनाकानी करता तो संबंधित व्यक्ति बिगड़ कर कहता, साला तो शिवनाथ का गुलाम है, वह क्या कर सकते हैं, मेरे यहाँ बैठकर खाया कर, वह क्या खिलाएंगे, बासी भात ही तो देते होंगे। रजुआ शिवनाथ बाबू से अब भी डरता था, इसलिए उनसे छिप कर ही वह अन्य लोगों का काम करता, किंतु उसको पीटने का और व्यक्तियों को भी उतना ही अधिकार था। एक बार जमुना लाल के लड़के जंगी ने रजुआ से तीन चार आने की लकड़ी लाने के लिए कहा और रजुआ फौरन आने का वादा करके चला गया, पर वह शीघ्र न आ सका क्योंकि शिवनाथ बाबू के घर की औरतों ने उसे इस या उस काम में बांध रखा। बाद में वह जब जमुना लाल के यहाँ पहुँचा तो जंगी ने पहला काम यह किया कि दो थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए। फिर गरज कर बोला, सुअर धोखा देता है, कह देता नहीं आऊंगा। अब आज मैं तुझसे दिन भर काम कराऊंगा, देखें कौन साला रोकता है, आखिर हम भी मोहल्ले में रहते हैं कि नहीं। और सचमुच जंगी ने उस दिन दिन भर का काम लिया। शिवनाथ बाबू को सब पता लग गया, लेकिन उनकी उदार व्यावहारिक बुद्धि की प्रशंसा किए बिना नहीं रह जाता, क्योंकि उन्होंने चूं तक नहीं की। ऐसी कई घटनाएं हुई, पर रजुआ पर किसी का स्थायी अधिकार निश्चित न हो सका। उसकी सेवाओं के उपयोग संबंधी खींचातानी से उसका समाजीकरण हो गया। मोहल्ले के लोग का कोई व्यक्ति उसे 2-4 रुपए देकर स्थायी रूप से नौकर रखने को तैयार न हुआ, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली कतई न था कि 24 घंटे नौकर की महान जिम्मेदारियां संभाल सके। वह तेजी से के साथ 25-50 गहरे पानी न भर सकता था। गगरे बाजार से लौटकर भारी सामान सौदा न ला सकता था, अतएव लोग उससे छोटा मोटा काम ही लेते, इच्छा अनुसार उसे कुछ न कुछ दे देते। अब वह न शिवनाथ बाबू के यहाँ टिकता, न जमुना लाल के यहाँ, क्योंकि उसको कोई टिकने ही न देता। उसको रजुआ ने भी समझ लिया और मोहल्ले के लोगों ने भी। अब वह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सारे मोहल्ले का नौकर हो गया।